अभी हम शुरुआत में एक विषय ले रहे हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे और इस विषय का नाम है प्रभु प्रेम की निर्मल धारा मुरली। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मुरली आप सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं। आज इसी मुरली के खजाने के विषय में कुछ बातें हम और सूक्ष्मता से जानेंगे। सबसे पहला तो आप सभी से हम पूछते हैं कि मुरली क्या है ब्राह्मणों के लिए। 50 जवाब बताओ, कम से कम 50। तो ब्राह्मणों के लिए मुरली क्या है? सभी बताएंगे, एक भी ऐसा न हो कि जो न बताए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं मुरली क्या है। मुरली क्या है इसकी परिभाषा बताओ, या मुरली ब्राह्मणों के लिए क्या है वो बताए। अपनी बुद्धि को थोड़ा दौड़ाओ। तो माताओं से चालू करते हैं, ब्राह्मणों के लिए मुरली क्या है? क्या है ब्राह्मणों के लिए मुरली? जीवदान है। जो लिख सकते हैं सारी पॉइंट्स लिखते रहो। ब्राह्मणों के लिए जीवदान। हम मर चुके थे संसार में, मुर्दा हो गए थे, ये जीवदान जैसे भगवान ने आकर दिया। भगवान की आवाज सुनना चाहते थे भक्ति में, वह अनहद नाद, परंतु कभी सुनाई नहीं दिया। जंगलों में जाकर तपस्या की, हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या की, संसार को छोड़ा, भक्ति में अपने मन को रमाया, परंतु उसकी वह व्यक्त आवाज, उसके वह बोल मुरली है। तो मुरली क्या है? ब्राह्मणों के लिए जीवदान। सुनते सुनते यह भी अनुभव करते जाओ, क्या मेरे जीवन में ऐसा है? क्या मैं मुरली को इतना महत्व देता हूं? क्या मेरे लिए वो जीवदान है? क्या मैं कभी उदास हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, पीड़ित होता हूं, तो क्या मुरली जीवदान बनकर जीवन में उतरती है? अगर नहीं तो उसको उतारना है, क्योंकि मुरली स्वयं परमात्मा महावाक्य है। दूसरा पॉइंट क्या है? आत्मा का भोजन। कितने भूखे हो गई थी आत्मा, इतनी प्यासी थी, इतनी दुर्बल निरीह हो गई थी, शक्तिहीन हो गई थी। ऐसी शक्तिहीन को यदि कोई भोजन खिलाए तो उसमें शक्ति आ जाए। यदि हम मुरली का भोजन नहीं खा रहे हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। और अभी भी अगर जीवन के प्रति, अपने घर की पारिवारिक समस्याओं के प्रति, संबंधों के प्रति, अपने ही संस्कारों के प्रति कुछ जीवन में प्रश्न है, तो शायद संभवतः ये भोजन हम उसे नहीं खिला रहे। भूखों मर रही है हमारी आत्मा, हम खिला ही नहीं रहे। भोजन हम केवल थाली में ही रखते थे, डायरी में, खा नहीं रहे। और सभी समस्याओं का हल, सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, सभी प्रश्नों का एक हल। परंतु आप कहेंगे कि ऐसा तो हर बार नहीं होता, बहुत बार ये दिखाई नहीं देता, परंतु छिपा है वहां। आंख नहीं है, आंख शायद बंद है। जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसमें है। अव्यक्त वाणियां जो बाबा ने चलाई है 69 से लेकर तो 80s 90s तक, उसमें इतनी डीप फिलॉसफी है कि उस फिलॉसफी के सामने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनस्विद हार खा जाए। इतनी डीप फिलॉसफी है, शायद पर हमने उसे समझा नहीं, अब तक पहुंचे नहीं है, लॉक्ड है जैसे वो। और माता जी कह रहे हैं क्या है वो? साजन का लव लेटर, प्रेम पत्र। संसार में यदि किसी को प्रेम पत्र आ जाए, अभी तो व्हाट्सएप और ईमेल और बाकी चीजें हैं, जब ये सब नहीं था तो जब पत्र आ जाता था तो क्या क्या करते थे? छिपा के रखते थे, बाथरूम में जा जाके पढ़ते थे, लाइट में पढ़ते थे, टॉर्च में पढ़ते थे, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, कितनी गोपनीयता थी उसमें। और कितनी बार पढ़ते थे, एक बार या दो बार कि अनगिनत बार, जब तक वो पूरा याद ना आ जाए तब तक पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। ऐसा प्रेम रहता है। बाबा ने कल की मुरली शुरुआत में ही कहा था, जब सगाई हो जाती है, याद है कल की मुरली, सगाई हो जाती है तो ऐसा बहुत कम हो जाता है कि उसको छोड़ते हैं। हाँ, कभी कभी छोड़ते हैं, यहां तो बाबा को छोड़ देते हैं। आज भी कहा, कोशिश की थी, आज की मुरली में महावाक्य है, कोशिश की थी कभी किसी को नाम देने की, पर वो भी भागंती हो गए, तब से फिर नाम देना भी बंद कर दिया। तो ये प्रेम पत्र है, किसने लिखा है, जन जन को जिसको पुकारा, वह माशु कब आया है, वह प्रेमी अब आया है, वो आया है सब कुछ देने के लिए। और जब वो आया है तो इस संसार में उसके सिवा और कोई पुरुष नहीं। मीरा के जीवन में उदाहरण दिखाते हैं। मीरा जब पहुंची वृंदावन, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे जीव गोस्वामी, और मीरा ने कहा, जीव गोस्वामी परम ब्रह्मचारी सन्यासी, किसी स्त्री का चेहरा भी नहीं देखने वाले, और निरंतर कृष्ण प्रेम और कृष्ण की गाथा सुनाने वाले, कृष्ण प्रेम में डूबे रहने वाले, परंतु स्त्रियों से दूर रहने वाले, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी के पास जब मीरा आती है और कहती है कि मुझे जीव गोस्वामी के दर्शन करने हैं, तो उधर से संदेश आता है कि आप नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बताते हैं हमारे जो गुरुजी है किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीरा कहती है, क्या कृष्ण के सिवा भी इस संसार में कोई पुरुष है? एक ही तो पुरुष है बस, गिरिधर गोपाल, क्या उसके अतिरिक्त भी कोई पुरुष है? कैसी भक्ति होगी उसकी, कैसी प्रेम में मगन करने वाली भक्ति होगी कि उस आयु में अपना सब कुछ उस गिरधर को मान लिया। संसार के पुरुष, संसार की वस्तु सब छूट गई। ऐसी प्रेम मगन अवस्था क्या हम आत्माओं की है? अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा, क्या ऐसी प्रतीक्षा हमारी है उसके उस मुरली के लिए, उसके उस संदेश के लिए, उसके उस प्रेम भरे पत्र के लिए? क्या उस भाव से हम उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं? गोपियों की क्या अवस्था थी, सुनी ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काजल लगा रहा है, काजल इधर चला गया, पानी दे रही है, पानी बह रहा है, कंगी बना रही है, वो कंगी गिर रही है, उनको होश ही नहीं है। जैसे कृष्ण प्रेम में मराठी में कहावत है, कृष्ण ध्याति गीति, कृष्ण गाती चित्ती हे ची, कृष्ण होती कृष्ण ध्याने, कृष्ण का गुणगान करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए वो गोपी अब गोपी नहीं रही, वो स्वयं कृष्ण बन गई। जब उद्धव उधर आता है और उनको समझाता है, आप किसके प्रेम में पागल हो, वो तो ब्रह्म है, गोपियां मानने को तैयार नहीं है, वो कहती है वो तो हमारे साथ यहां खेला था, वो हमारे साथ यहां उसने नृत्य किया था। वो बेचारा उद्धव या उद्धव गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने आता है, और 6 मास में ऐसी उसकी हालत होती है कि साष्टांग दंडवत करके लौटता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान की गर्मी थी, परंतु गोपियों के पास प्रेम की अग्नि थी। क्या ऐसी प्रभु प्रेम की अग्नि हमारे हृदय में प्रज्वलित है? है तो मुरली क्या है, परमात्म पत्र है, और डायरेक्ट डायरेक्ट मिलन होता है मुरली से, और क्या है, मुरली बाप टीचर और सद्गुरु है, और अमृत है, और आत्मा के लिए दवा है। खुराक है, भोजन है। बाबा ने कहा है आत्मा क्या हो गई है, रोगी बन चुकी है। कौन सा रोग हुआ है इसे? विकारों के रोग। ऐसे गहरे रोग है कि ये ठीक नहीं होते। भव भय वैद्यम की आवश्यकता है, जो इस भव सागर का वैद्य है उसी की आवश्यकता है। बाकी इस रोग को कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक, कोई वैद्य ठीक करने वाला नहीं है, क्योंकि ये विकारों की कट लगी हुई है आत्मा में। उसे तो वही ठीक कर सकता है, सुप्रीम सर्जन। तो ये दवाई भी है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। और पीछे से आवाज नहीं आ रही है। जीवन जीने की कला सिखाने वाली है और संजीवनी बूटी है। वहां दिखाया है ना, लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो संजीवनी बूटी आती है और तभी वो सुरजित होता है। तो हम भी, विकारों ने हमें मूर्छित कर दिया है, माया ने मूर्छित कर दिया है, हरा दिया है। जो कर रहे हैं पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, मूर्छा में सारे कर्तव्य हो रहे, वो जागरण की अवस्था ही नहीं रही है। गिर रहे बार बार, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं। गड्ढे में व्यक्ति कब गिरता है? जो होश में है वो गिरेगा कभी? शायद होश में नहीं है तब तो गिर रहा है। तो ऐसी मूर्छा जो थी उससे जगाने का साधन क्या है? ऐसी ये संजीवनी बूटी मुरली है। और पीछे से बताएंगे क्या है। ज्ञान सागर का ज्ञान है, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा है, कल की मुरली में स्लोगन था, सदा ज्ञान सागर के सम्मुख रहो। तो क्या हो जाएगा? बाप के सारे गुण तुम में आ जाएंगे, धारण हो जाएंगे। अगर सदा बाप के सम्मुख रहो तो अहो सौभाग्य ज्ञान सूर्य के सम्मुख। वो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर है। उसने जो ज्ञान दिया वो कहीं पर भी नहीं है संसार में। सारी किताबें ढूंढ के आ जाओ, किसी भी किताब में ये ज्ञान नहीं है। संसार में बहुत सारी भक्ति के साहित्य है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सार सुनाने आया हूं, खुद जज करो मैं जो सुनाता हूं वो राइट है या संसार की आत्माएं जो सुनाती है वो राइट है। बाबा ने कहा है जज करो। तो ये सार ज्ञान का सार है। कभी बाबा ने यह भी कहा है, मैं ज्ञान सागर आता हूं, अपना सारा ज्ञान उंडेल देता हूं, खाली होकर चले जाता हूं। परंतु खाली वो कभी हो नहीं सकता। ऐसा वो ज्ञान सागर का ज्ञान मुरली है। और अभी इधर से, अभी भाइयों की तरफ से, मुरली जादू है जादूगर की। कौन सी जादू करती है? मनुष्य से देवता बनाने की, जैसे एक फैक्ट्री है, एक जादू हो जाता है उसमें। और देवताओं की वाणी, वाह, या देवता बनाने की वाणी कहेंगे। और विचारों को परिवर्तन करने के लिए एक ठोस आधार चाहिए, वो मुरली है। बिना मुरली का अध्ययन किए हमारे विचार परिवर्तन नहीं हो सकते। और यदि विचार परिवर्तन नहीं हो रहे, शायद हमारी विधि गलत है। जिस ढंग से हम मुरली पढ़ रहे, सुन रहे, मनन कर रहे, चिंतन कर रहे हैं। और क्या करती है? लक्ष्य की याद दिलाने वाली। और क्या कहा भाई जी ने? दैनिक जीवन की जैसे मार्गदर्शिका है। एक लाठी है, एक अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए हैं। मुरली वह लाठी है जिसको पकड़ पकड़ के तुम सत्युग में पहुंचते हो। लाठी चलती है ना, लाठी लेके माता है बूढ़े लोग। बाबा ने कहा मुरली वो लाठी है जिसको पकड़ पकड़ के तुम सत्युग में पहुंच जाते हो। सभी बताएंगे, माताएं नहीं बताएंगी, भाइयों की तरफ से सभी अपनी बुद्धि को दौड़ाओ। 63 जन्मों के पाप धोने वाली ज्ञान गंगा है। अभी ये गंगा बह रही है, अवसर है, डुबकी लगा लो, फिर अवसर नहीं आएगा। और क्या है? संगीत है आत्मा के लिए, वो संगीत है आत्मा के लिए। वह स्वर है, वह सुर है, जो सुनते ही आत्मा मन की डांस, मन की डांस, मन का मौन, मन शांत और मन शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा वह नाद है, ऐसा वह स्वर है, ऐसा वह अव्यक्त आवाज है। और प्रेम की अभिव्यक्ति है, परमात्मा प्रेम की अभिव्यक्ति है। जितना प्यार उसमें होता है एक एक शब्दों में, शुगर कोटेड है एक एक शब्द, वैसा और कहीं नहीं हो सकता है। और क्या है? तीसरा नेत्र, ज्ञान की गंगा हो गया। और पावर हाउस है, शक्ति हाउस है। और दैवी गुणों की, दैवी गुणों और शक्तियों का खजाना है। नौ प्रकार के खजाने गिनाए हैं बाबा ने। भक्ति में भी कहते हैं नवनिधि। हनुमान जब पहुंचता है सीता के पास तो सीता उसके सिर पर हाथ रख के कहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। नवनिधि अष्ट शक्तियां, कौन सी वो नवनिधियां है जो मुरली जिसका खजाना है? सबसे पहला है ज्ञान, फिर है गुण, फिर है शक्तियां, फिर है समय, फिर है संकल्प। समय और श्वास एक ही हो गया। उसके बाद है खुशी का खजाना, उसके बाद है पवित्रता का खजाना, और आठवां दुआओं का खजाना, और नौवां श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, पुण्यों का खजाना जिसको कहेंगे। ऐसे ये नौ निधियां भक्ति में गायन है, वही नौ निधियां यहां पर भी है। और खजाने तो वैसे अनगिनत है, संतुष्टता भी खजाना है, बोल भी खजाना है, अनगिनत खजाने, परंतु इन नौ खजानों का गायन है। तो इन सारे ही खजाने कहां मिलते हैं? मुरली में। और क्या है मुरली? सच्ची गीता है मुरली। क्या है? सच्ची गीता। अगर गीता शब्दों को बहुत बार बोला जाए, बोल के देखो, गीता 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 बोलो, जोर जोर एक साथ बोलते रहो, गीता 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 गीता, त्याग त्यागी, गीता 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 कहते रहो, तो उसमें त्याग उसका सार आता है। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़, मन मना भव मध्याची भक्ता माम नमस्करो। हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ। मैं अहम त्वाम सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे तुम्हारे तेरे सारे पापों से मुक्त करूंगा। गीता महावाक्य है। तो सच्चा सच्ची गीता, सच्चा सच्चा भागवत, सच्चा सच्चा रामायण, तिजोरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, सब कुछ मुरली है। और सदर्शन चक्र का ज्ञान देती है, और नष्टो मोह बनाती है, विश्व की राजाई देती है। आज की मुरली में ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई भी है, लड़ाई भी है और चढ़ाई भी है। वो कभी और सुनाएंगे। हाँ जी, मुरली ज्ञान का अमृत है। मुरली क्या है? ज्ञान का अमृत है। भागवत में एक गोपिका गीतम है, जिन्होंने भागवत सुनी है या पढ़ी है उनको पता होगा, गोपिका गीतम, जिसमें सारी गोपियां श्री कृष्ण के सामने है और उसको कह रही है, तव कथामृतम, हे कृष्ण तेरी जो कथा है, तेरी जो वाणी है, ये गोपिया गोपी वल्लभ से कह रही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप रहा है, हे गोविंद हे गोपाल हमारा जीवन तप रहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्डितम, तेरी जो वाणी है उसे किसी कवियों ने जिसका गायन किया है, कविभिर्डितम कल्म शापहम, हमारे जीवन में कलंक लगे है, कलमश है, विकारों के दाग है, कलमशाप हम, श्रवण मंगलम, जिसको सुनते ही क्या होता है? श्रवण मंगल होता है, श्रवण मंगलम, ऐसा गोपी गीतम भागवत में लिखा है, भूरिदा जना। तो मुरली क्या है? वह गोपिका गीतम, वह अमृत है। अमृत की एक बूंद भी यहां आ जाए तो आत्मा जागृत हो जाए, नव प्राण उसमें संचारित हो जाएंगे। और क्या है मुरली? ब्राह्मण जीवन का ग्रंथ है। देखो कितनी सुंदर पॉइंट है, कभी किसी ने सोची थी ये पॉइंट? इसे कहा जाता है सामूहिक चिंतन। एक होता है व्यक्तिगत चिंतन, यह है सामूहिक चिंतन, ऐसा ग्रंथ जिसे स्वयं भगवान बैठ सुना रहा है और इधर से कोई आवाज नहीं आया अभी तक। सुखों का खजाना है, अतीन्द्रिय सुख का खजाना है, वरदानों का खजाना है, प्रेम का खजाना है, आनंद का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, शांति की आवाज है। और इधर से मुरली नरसे नारायण बनाती है और ज्ञान की बरसात है। बाबा ने कई बार मुरली चलाई है, ये क्या है? बरसात, बारिश है, बारिश। बाबा ने ये भी कहा है कि तुम बन के जाओ, तुम बादल हो, तुम ज्ञान सागर के पास आते हो, बादल भर के फिर जाके बरसाते हो। तो मुरली क्या है? वह ज्ञान का एक बादल कहो या बारिश कहो। इस बारिश में अगर कोई, सोचो अगर कोई व्यक्ति घर में बैठा है, बाहर बारिश हो रही है और वो कहता है कि मुझे भीगना है परंतु बाहर नहीं जाना चाहता, तो क्या कहेंगे उसे? उसे तो भीगना है तो बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाओ, बारिश हो रही है, परमात्मा प्रेम की वर्षा हो रही है, बस जाकर खड़े रहना है तो भीग जाओगे, तर बतर हो जाओगे इस प्रभु प्रेम में। और इधर से क्या है? ज्ञान अंजन सद्गुरु दियो, ये अंजन है ज्ञान का। और क्या है? मुरली ही हमारी करेंसी है। वाह, मुरली ही हमारी क्या है? करेंसी है, जो कभी रद्द नहीं कर सकती कोई सरकार इस संसार की। ये अविनाशी स्टैंप लगा हुआ है इस करेंसी पर। इस करेंसी पर किसकी फोटो है? जो बेहद का बापू है उस करेंसी पे किसकी फोटो है? जो हद का बापू है यहां किसकी फोटो है? जो बेहद का बापू है, देह भान को खत्म करती, देह अभिमान को खत्म करती, देह अहंकार को खत्म करती है। आज की अभी जो संदेश सुना दादी का, उसमें एक वाक्य था, मैं कौन मेरा कौन, ये अभिमान को खत्म करता है। सुना सभी ने? मैं कौन मेरा कौन, ये देह भान को, देह अभिमान को खत्म करता है। और क्या है? कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाली है, अंग अंग शीतल कर देती है। कर्मेंद्रियों में जो उत्तेजना है, जो विकार है, जो वासनाएं हैं, वो कैसे शांत होंगे? तप्त जीवनम, गोपियों का वही गीत, तप्त जीवनम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। ऐसे तप्ते मन को, ऐसी मन की तपिश को शांत करने वाली यह मुरली है। और क्या है? सच्चे मोती। अच्छा, ये मुरली जादू है, डबल जादू हो गई। और बोलो, 21 जन्मों की राजाई की चाबी है ये कुंजी है, की है, मुरली दर्पण है जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। पासपोर्ट है मुरली, कहां पहुंचा देता है ये पासपोर्ट? बिना पासपोर्ट के पहुंच नहीं सकेंगे। और इस पासपोर्ट का ऑफिस कहां है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सेवा केंद्र, यहां पर ये पासपोर्ट मिलता है। बिना यहां आए ये पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और क्या है मुरली? सुरक्षा कवच है। वाह, कितनी अच्छी पॉइंट है। इस कवच को पहन लो तो फिर सुरक्षित, कोई कुछ नहीं कर सकता, माया की कोई चाल नहीं चल सकती। ऐसा ये कवच हम पहन के रहे सारे दिन भर। और क्या है? बेहद का वैरागी बनाती है। और मुरली ही श्रीमत है, मुरली क्या है? भगवान की श्रीमत है। और जिन्होंने अपने मुरली को ही, श्रीमत को ही जीवन बना दिया है, उनका, उनकी रक्षा स्वयं वो मुरलीधर करता है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, ऐसी आत्मा जो मेरे प्रति संपूर्ण समर्पित है, उसका सब कुछ मैं करता हूं। सभी ऋणों से वो मुक्त हो जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, संसार के जितने ऋण है और सब कुछ है, वो सब से मुक्त हो जाता है यदि कोई ऐसी भावना से मेरी शरण में आ जाए। इसका विस्तार तो और कर सकते हैं हम, अभी थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। ये जो मुरली है, अभी एक है मुरली सुनना, एक है मुरली लिखना। बाबा ने अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए हैं कि जो गाय गाय काऊ ज्ञान का ज्ञान, जो गाय उगारती नहीं है उसे क्या कहा जाता है? बीमार। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। तो इस सभा में जो जो बीमार है वो हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं? जो जो ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं वो हाथ खड़ा करो। अब जो नहीं करते वो सब क्या हुए? अब पकड़े गए। बाबा ने कभी कहा है जाना सेंटर पर मुरली सुनना और आ जाना, ये है पुरानी चाल। गए मुरली सुनी, पॉइंट्स नोट किए और चले घर, डायरी बंद। डायरी कब खुलती है? दूसरे दिन। कोई कोई माताओं को हमने सेंटर पर ही डायरी रख के छोड़ के जाते हुए भी देखा है। एक टेबल होती है वहीं पे डायरी छोड़ देती है, दूसरे दिन आके फिर खोलती है और उसमें जो पॉइंट्स लिख दिया बस। ऐसा भी है। तो हमें मुरली का क्या करना है? चिंतन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है और सबसे महत्वपूर्ण उसकी आपस में चर्चा करनी है, बात करनी है। एक किताब है वारे में ब्राह्मण आत्मा, उसमें ब्राह्मणों के 10 कर्तव्य लिखे हैं। कर्तव्य नंबर 10 ब्राह्मणों का कर्तव्य है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ज्ञान की चर्चा करना। तो अभी सभी से 4 प्रश्न हैं। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मुरली की जितनी पॉइंट्स अभी सुनी वो सभी मन ही मन रिवाइज करना है।
अपने कर्मों के बल पर ही सत्य।
चार प्रश्न हैं, सभी लिख कर रखे इन प्रश्नों को। मुरली का चिंतन क्यों करना है, पहला प्रश्न। मुरली का चिंतन कब करना है, दूसरा प्रश्न। मुरली का चिंतन कहां करना है, तीसरा प्रश्न। और चौथा, कैसे करना है। तो हम सभी अभी फिर से चिंतन करेंगे कि मुरली का चिंतन क्यों करना है। 10 कारण बताओ कोई भी माताओं की तरफ से, क्या इतना ही काफी है कि जो हमने सुन लिया वो डायरी में लिख दिया और हो गया काम पूरा। मुरली एक बार सुन ली, दो बार सुन लिया, काम पूरा हुआ। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाएगा, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि हमें परिस्थितियां दिन रात आने वाली है, परीक्षाएं तो आएगी, परंतु यदि बुद्धि में यदि ज्ञान नहीं है तो उस परिस्थिति का चिंतन चालू हो जाएगा, फिर और ही उलझन बढ़ती जाएगी, और ही सोचते रहेंगे बस, फिर संसार के लोग और हम में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे पास ज्ञान तो है परंतु हमारी केवल डायरी में रह गया है वो। फिर तो सभी से प्रश्न है, ऐसी 10 कारण बताओ क्यों करना है चिंतन मुरली का। पुराने संस्कारों से क्या, तो क्या मुरली का चिंतन क्यों करना है फिर, उसके लिए योग करो। धारणाएं शक्तिशाली होगी। मुरली में एक महावाक्य आ जाता है, परंतु जब तक हम उसका चिंतन नहीं करते तब तक वो धारणा में कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता धारणा में। केवल सुन लिया, कल की मुरली याद है ना, बाबा ने कहा था, क्या कहा था, बच्चे मुरली सुनते हैं, धारणा होती नहीं है, और फिर सुनते रहते हैं और आदत पड़ जाती है और धारणा कभी नहीं होती, क्योंकि सुना हुआ है, वही सुना है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, अब तुमको स्वर्ग में चलना है, आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम्हें बाप समान बनना है, तुम्हें फरिश्ता बनना है, सारा रट चुके हैं, सब पता है क्या आने वाला है मुरली में। अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अभी तुम्हें हड्डी सेवा करनी है, तुम्हें बाप का पैगाम सभी आत्माओं को देना है, उठते बैठते खाते पीते बाप को याद करो। किसको पता नहीं है, सबको ही पता है। ऐसा कोई है जो कहेगा कि ये बातें हमने कभी सुनी नहीं है? ऐसी कौन सी ज्ञान की पॉइंट है जो हमने सुनी नहीं है, सारी सुन चुके हैं, सुनने को कुछ बचा नहीं है। इसके लिए तो मुरली में थोड़ी ज्यादा नींद आती है, फिर सुना तो है पर क्या चिंतन किया, क्या मनन किया, नहीं। तो धारणाएं कब होगी, जब चिंतन किया जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, वो मैच्योरिटी कहो या स्टेबिलिटी कहो, जब हम चिंतन करते हैं किसी विषय का। यदि हम किसी को चिंतन का विषय दे देते हैं और इसको किसी को कहते हैं कि इस पर आपको बोलना है या इस पर चिंतन करना है, तो हमारी बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाती है और हम स्टेबल हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को कहो उसको भाषण देना है 15 अगस्त पर, कैसे तैयारी करता है, फटाफट पढ़ता है, तैयारी करता है वो, उसी तरह तैयारी की आवश्यकता होती है। तो निर्भयता आती है क्योंकि ज्ञान निर्भय बनाता है, परंतु इंफॉर्मेशन निर्भय नहीं बनाती है। इंफॉर्मेशन संसार में भी बहुत है, सूचनाएं, ये सारी सूचनाएं हैं, बाप आए हैं, तुम्हें अब वापस घर जाना है, तुम्हें नष्टो मोहा बनना है, तुम्हें सबसे ममत्व निकालना है, ये वेश्यालय है, तुम संगम पर हो, तुम ना इधर हो ना उधर हो, तुम अभी जा रहे हो, आज की मुरली में सारे ऐसे महावाक्य है, ये है फिर भी सूचनाएं, परंतु शक्ति कैसे बनेगी, जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे। एकाग्रता तभी आएगी, स्टेबिलिटी तभी आएगी, निर्भयता तभी आएगी जब उसका मनन करेंगे। और भाइयों की तरफ से अभी इधर रुको, परिस्थितियों का सामना करने का बल आएगा। बाबा ने मुरली में कहा है, तुम्हें निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सर्दी गर्मी सब में समान रहना है, सबने सुना है, परंतु हमने चिंतन नहीं किया इस विषय पर, इस वाक्य पर, कैसे रहना है, कब रहना है, क्या करे, कौन सी धारणाएं अपने में लाए, क्या मुझ में कमी है। जब तक ये चिंतन नहीं होगा परिस्थिति आएगी हलचल। सुबह मुरली सुनी, अमृत वेला किया, दिन भर में हलचल और अनुभव क्या का स्वरूप बनने के लिए चिंतन बहुत आवश्यक है। और चिंतन से बहुत सारे, कई लोगों की आदत होती है दूसरों को अपने जीवन के प्रश्न पूछते रहते हैं। हमारे जीवन में ऐसा है, इसका क्या किया, हमारे जीवन में ऐसा है, क्या करें। वास्तव में किसी भी प्रश्न का उत्तर बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आना है, मुरली से ही आना है और इसी से आना है, चिंतन से ही आएगा। जितना हम अपनी समस्याओं को दूसरे साथ शेयर करते जाते बाबा के साथ शेयर करना कम होते जाता है। एक सूक्ष्म सिद्धांत है, जितना हम लोगों को बताते जाएंगे, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसका सोच विचार कर रहे हैं, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, इधर शेयरिंग ज्यादा हो तो उधर अपने आप कम हो जाता है, फिर बाबा भी उसमें वहां साक्षी होता है। और चिंतन से क्या होगा, क्या बनती है, आत्मा में प्यूरिटी का बल आता है। क्या होता है, आत्मा में प्यूरिटी का तेज बल आता है, वाणी में बल आता है, और क्या होती है दिव्य, नहीं क्या होता है, चिंतन क्यों करना है वो प्रश्न है। अष्ट शक्तियां आत्म शक्तिशाली बनती है, जितनी भी शक्तियां है वो हम में आने लगती है। जैसे समाना, कैसे समाए, सहन करना, कोई अगर अपमान कर दे सबके सामने, क्या इतनी पावर है। एक बार दादी जानकी ने क्लास कराई थी जिसमें कहा था कि ब्राह्मणों को इंसल्ट सहन करने की पावर बहुत कम है। कोई अपमान कर दे हमारा, क्या हम सहन कर सकते हैं, क्या अहंकार जागृत हो जाएगा, ये कौन है हमारा अपमान करने वाला, क्या कहेंगे। ये पावर्स है, बहुत सूक्ष्म शक्तियां है, ये बहुत सूक्ष्म शक्तियां। ब्रह्मा बाबा ने कितना अपमान सहन किया, बहुत सारी की तो अभी चर्चा नहीं है, परंतु बहुत अपमान सहन किया। क्या क्या लिख के आया था न्यूज़पेपर में, ग्लानी की बातें, निंदा की बातें, कलंक लगाए गए अपवित्रता के, वो सब बाकी सब कुछ सहन कर लेता है व्यक्ति, पवित्रता के विषय में सहन करना ये बहुत ऊंची। कोई अगर झूठा आरोप लगा दे कि तुम ये हो तो, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, जापान की ये कहानी है, जहां पर एक सन्यासी रहता था, बहुत तेजस्वी और बहुत तपस्वी सन्यासी, सारा गांव उसे मानता था, सारा गांव उसकी वंदना करता था, इतना उसकी वाणी में और ओज और तेज था। तब तक जब एक दिन गांव की एक स्त्री ने कहा, जो कि गर्भवती थी, कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो इस सन्यासी का है। सारा गांव अब तक उसकी प्रार्थना वंदना करता था, उसे बहुत मानता था। सारे गांव वाले आ गए, सबसे पहले तो उसकी झोपड़ी को आग लगा दी, उसकी जो भी वस्तुएं थी, किताबें थी, सारी फेंक दी, उसको घसीट के बाहर निकाला। वो पूछ रहा है आखिर हुआ तो क्या, मुझे बताओ तो। उसके चरणों में वो बच्चा, गर्भवती नहीं, उसको बच्चा हो जाता है, वो बच्चा लिया और उसके चरणों में पटक दिया और पूछा ये तुम्हारा बच्चा है। तो वो सन्यासी, वो तो बहुत उच्च कोटि का सन्यासी था, उसने कहा अच्छा ये मेरा है, चलो मेरा ही सही, किसी का, किसी ना किसी का तो होगा ही, तो क्यों नहीं, मेरा है। वो लेता है और बच्चा बहुत रो रहा है जोर जोर से, वो कहता है इसको दूध तो पिलाओ। वो इतने गुस्से में रहते सारे, उस बच्चे को पटक कर सबके सब चले जाते हैं। सन्यासी दोपहर को उस बच्चे को लेकर गोदी में भीख मांगने निकलता है। कैसा दृश्य है ये, गली गली में जहां भी जाता है दरवाजा बंद, वो बेचारा उस बच्चे को कहता है, बच्चे को भूख लगी है, कहां से कुछ दे, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो उसी घर के पास पहुंचता है जहां वो स्त्री रहती है, और जब वो स्त्री देखती है उसकी ये हालत और उसका बच्चा उसके गोद में, तो उसको इतनी ग्लानि और इतना पश्चाताप होता है, वो अपने पिता से जाके कहती है कि इसके असली पिता को छुपाने के लिए मैंने इस सन्यासी का नाम लिया, ये सन्यासी निष्पाप है। तो उसका पिता कहता है ऐसी बात है, फिर से सारे गांव वाले आते हैं उसके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है इज इट सो, क्या ऐसी बात है, तो मेरा नहीं होगा, किसी का तो होगा। तो उसको वो कहते हैं कि जब हमने तुम पर ये आरोप लगाया, कलंक लगाया, तब तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि मेरे कहने से आप मानने वाले थे, जो जोश जो आवेग से आए थे, और चलो मेरा नहीं किसी का तो होगा, उसको तो भूख लग रही थी, मुझे तो बस उसे दूध पिलाना था, वो भी कोई दे नहीं रहा है। सत्य में विश्वास, सत्य की शक्ति पर विश्वास की परीक्षा जीवन में होगी, सभी को इस तरह की परीक्षाओं से क्रॉस करना पड़ेगा, इसमें नो अपवाद, कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहां पर। ऐसी परिस्थितियों में क्या हम इतने सशक्त और शक्तिशाली है कि सबको पास कर जाए, कोर्ट केसेस होंगे, झूठे आरोप लगेंगे, बहुत कुछ होगा संसार में, वहां हमारी परीक्षा होगी। बिना अग्नि परीक्षा के हम अग्नि शिखा नहीं बन सकते। तो प्रश्न था मुरली का चिंतन क्यों करना है, बहुत सारी पॉइंट्स आपने सुनाई, उसमें मैं दो तीन ऐड कर रहा हूं। ज्ञान का स्पष्टीकरण, जब तक मुरली का चिंतन नहीं करेंगे स्पष्ट नहीं होगा ज्ञान, दूसरों को हम सुना नहीं सकेंगे। मुरली में बहुत बार आता है, कई माताएं बच्चे बाबा से कहते हैं, बच्चे बाबा हमको ज्ञान समझ में आ गया पर हम समझा नहीं सकते। बाबा कहते हैं क्या नहीं समझा सकते, अर्थात गोया खुद नहीं समझा है। तो चिंतन से ज्ञान का स्पष्टीकरण होगा, क्लैरिटी आएगी ज्ञान की, दूसरों को हम समझा सकेंगे अच्छे से। ऐसे जैसे अभी 7 दिन का कोर्स कराते हैं, हमारे कोर्स करने की कराने की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। हम आत्मा को परख कर किस लिए आत्मा आई है उसको देखकर समझा सकेंगे। कोई आया है उसको टेंशन से मुक्त होना है, हम उसे ब्रह्मचर्य की बातें नहीं बताएंगे, पवित्रता की बातें नहीं बताएंगे। कौन किस खोज से किस जिज्ञासा से आया है नब्ज देखकर, वो मुरली के चिंतन से होगा। दूसरा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक परिपक्वता, ये तब तक नहीं आएगी जब तक हम चिंतन नहीं करते, और एक दिन का काम नहीं है, बार बार करना होता है, आदत बन जाए इस चिंतन की तो ही आत्मा में बल भरेगा और वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वो आध्यात्मिक परिपक्वता जीवन में आएगी। तो ये तो प्रश्न पहला था, ज्ञान का चिंतन क्यों करें। दूसरा प्रश्न है कब करें, भोजन करते समय, किसने कहा बहुत अच्छा, और अमृत वेले के बाद, और हर समय, ऊंची मंजिल है हर समय, और रात को सोने से पहले, और मुरली के बाद, ये एक बहुत अच्छा समय है, मुरली के बाद, तुरंत बाद, इससे पहले कि वो उड़ जाए उसको पकड़ लो दोनों हाथों से, नहीं तो उड़ जाती है वो, कब उड़ जाती है पता ही नहीं चलता है, कहां चली गई। परंतु इन सब में सबसे एक जो उत्तर बताया, अमृत वेले के बाद का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ समय है मुरली के चिंतन का। इस सभा में ऐसे कितने हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, जो अमृत वेला करकर सीधा बिस्तर पर सो जाते हैं, जिन्हें बिस्तर पुकारता है आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की बाहों में त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, बिस्तर पुकारता है सुबह सुबह, कितने हैं, कोई भी नहीं। अच्छा पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, अमृत वेला कितना करते हैं, बहुत है, और जो बाकी है वो अमृत वेला प्रथम श्रीमत है बाबा की, इसको भूलना नहीं है। जब तक गाड़ी उस पर नहीं, पटरी पर नहीं आती है, दिन भर में इधर उधर जाएगी। बाबा ने कभी अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए, यदि अमृत वेला तुम बच्चे स्वयं को परमात्मा प्रेम से भर दो तो सारे दिन भर और किसी के प्रेम में बुद्धि नहीं जाएगी। इतना स्वयं को प्रेम से भर दो। कभी टीचर से मुलाकात, अव्यक्त महावाक्य बाबा के, टीचर बहनों से बाबा कह रहे हैं, सेवा में सफलता नहीं मिलेगी यदि प्रेम से सेवा नहीं करते हो और किसी के प्रेम में फंस के करते हो। सेवा में सफलता तब तक नहीं मिलेगी अगर प्रेम से नहीं करते हो या फिर किसी के प्रेम में फंस कर करते हो, तो सेवा में सफलता नहीं होगी। इसके लिए अमृत वेला परमात्मा प्रेम से अपने आप को इतना भर दो कि फिर और किसी देहधारी के प्रेम के आकर्षण नहीं होगा। नहीं तो देहधारियों की मदद, प्रेम, केयर, अटेंशन, एप्रिसिएशन, उनकी प्रशंसा की आश रहती है अंदर ही अंदर कि कोई कुछ केयर करे, मुझे देखे, हम बीमार पड़े तो कोई मिलने आए। ये सारी इच्छाएं रहती है छोटी 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 जो हमें भगवान से दूर ले जाती है। इसके लिए कब करना है, अमृत वेले के बाद का जो समय होता है वो हमारा नींद में ना जाए। अभी अभी हम भगवान से मिलन मनाए हैं, अभी अभी आत्मा जागृत हुई है, स्वमान से जागृत हुई है, पांच स्वरूपों के अभ्यास से जागृत हुई है और हम सीधा बिस्तर पर चले जाए, क्या कहेंगे इसको। देखा गया है जो आत्मा है, दो प्रकार की आत्मा है। एक आत्मा वो अमृत वेला की और सो गई और सीधा फिर 6:30 बजे उठी। दूसरी आत्मा जो सीधा बिना अमृत वेले के 6:30 बजे उठी। दोनों की स्थितियों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। एक है जिसने अमृत वेला किया और सो गया, दूसरा है जिसने अमृत वेला किया ही नहीं और उठ रहा ही 6:30 बजे। स्थितियां ज्यादा अंतर नहीं है। दिन में माया आएगी, समस्या आएगी, परेशान होंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, सब कुछ होगा। फिर बाबा को कहेंगे, बाबा आप मदद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, प्रश्न ही प्रश्न जीवन में। तो ये समय है चिंतन का। तीसरा प्रश्न, कहां करेंगे चिंतन? एकांत में। कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा है एकाग्रता, एकांत, और बाबा के सामने बैठकर, और कहीं पर भी बैठ के कर सकते, परंतु फिर भी कोई अच्छा स्थान, चलते फिरते, और जो हर एक स्वयं करता है वो उत्तर बताओ। आप कहां करते हो? अपने अंदर जाके छत पर। बहुत सुंदर उत्तर है, छत पर। और समस्या के समय, और समस्या नहीं हो तो तब नहीं करना है जब शत्रु आ जाए तब अगर सीधा युद्ध करने लगे तलवार तो आएगा चलाना। और हम स्थान पूछ रहे हैं, स्थान, खाना बनाते समय, चलो कर्म हो गया, कर्म करते, और पार्क में जाके, गार्डन में जाके, बगीचे में जाके, और भाइयों की तरफ से, अभी रुको, माताओं का हो गया, इधर, हाँ, अच्छा, एक जो उत्तर है इस प्रश्न का, मुरली का चिंतन करना है प्रकृति के सानिध्य में, जहां बहता झरना हो, जहां झील हो, जहां पर्वत हो, जहां नदियां हो, जहां खेत हो, जहां खलियान हो, जहां, अगर ये सब नहीं है, आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो आप बोलो क्या करना है बगीचा तो होगा, कोई कहेंगे हमारे पास बगीचा भी नहीं है, छत तो होगा, कोई कहेंगे हमारे पास छत ही नहीं है, रास्ते तो है मुरली सुनने जब आते हो और जाते हो तो बजाय इसके कि यहां वहां की बातें करो, मुरली का एकांत में मनन करते करते जहां प्रकृति का सानिध्य आ जाएगा, प्रकृति में हमारा मन खुल जाता है। जितने कवि, महान साहित्यकार, आर्टिस्ट, पेंटर्स, ये जितने हुए हैं, इन सबको प्रकृति से बहुत प्यार था, जितने कवि जितने लेख जितने कविताएं लिखी गई है वो प्रकृति के सानिध्य में लिखी जाती है। ऐसा अगर कोई स्थान मिल जाए, बाबा के कमरे में भी चिंतन कर सकते हैं, परंतु ऐसा कोई स्थान मिल जाए जहां प्रकृति का आनंद हो, जहां चिड़ियों की चहचहाट, जहां कल कल बहता झरना हो, वो समय वो स्थान जो होता है श्रेष्ठ चिंतन होता है। और उसी स्थान पर अगर कोई हम चिंतन करे तो, और उसी दिन यदि जीवन में परिस्थिति आ जाए तो हम बहुत स्टेबल रहेंगे, क्योंकि उस चिंतन ने हमें बहुत परिपक्व बनाया है। अंतिम प्रश्न है, चिंतन कैसे करें? अब यह सबसे मुश्किल प्रश्न है। क्या कहेंगे हम? एक चिंतन का विषय दे रहे हैं आपको, अभी करते हैं यह एक्सपेरिमेंट। पहले भाइयों की तरफ से, ये क्या है? साबुन। कोई भी भाई एक यहां आ जाए अभी के अभी, और साबुन से संबंधित बाबा के क्या महावाक्य है या साबुन जिसमें शब्द आए वो सुनाए। आ जाओ फटाफट, आ जाइए आ जाइए। दूसरा माइक अगर होगा तो दे दीजिए, दूसरा माइक है। आप बोलो, हम इसमें सुना देंगे। तो अभी हम एक चिंतन की प्रक्रिया यहां चालू कर रहे हैं। इसके विषय में बाबा ने क्या क्या कहा है वो सब कुछ बताओ। हाँ, आपको ही बताना है, इसीलिए तो बुलाया है। आपको सब मदद करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये लक्ष्य सोप है, इससे बोलिए, बोलते जाइए, हम यहां से बोलेंगे, आप जो बोलेंगे। हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान की तुलना बाबा ने साबुन से की है। ये ज्ञान साबुन से अपने को क्या करना है? आत्मा को स्वच्छ करना है। और बताते जाओ आप भी। कड़े संस्कार इस सोप से धो, और क्या क्या? तो आत्मा की सफाई करनी है, हो गया सफाई के बारे में। और साबुन से संबंधित भाबा कौन है? कौन सा धोबी? बेहद का धोबी। मैं बेहद का धोबी हूं, वो आया है आत्मा की धुलाई करने। आत्मा मूत पलीती कपड़ धोए, बहुत ही मैली हो गई है आत्मा। आत्मा का ये जो कपड़ा है इसको साबुन की तुलना, एक तो ज्ञान साबुन है, दूसरा और क्या है साबुन? ये पवित्रता भी एक साबुन की तरह है। पवित्रता की जो धारणा है वो भी साबुन की तरह है। वैराग भी साबुन की तरह है, जो राग को धो डालता है सारे के सारे। तो इस तरह से ये छोटा सा चिंतन था। एक दूसरा हम देंगे जो माताओं की तरफ से कोई आके बताएगा। ये क्या है? बिंदी। कोई भी एक माता इधर आ जाइए, और इसके विषय में बाबा ने जो भी कहा है, जहां भी कहा है, जैसे भी कहा है, जितना भी कहा है वो बताए। इधर आके बताइए, आइए आइए आइए, आ जाइए। बिंदी के विषय में बाबा ने क्या क्या कहा है? ये चिंतन की प्रक्रिया। सबसे पहला तो तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो एक, वो भी बिंदी। आज की मुरली में भी महावाक्य है लाइट हाउस। बाबा जो है लाइट माइट है, बिंदी है। दूसरा, तीसरा, ड्रामा में बिंदी लगाओ, जो बीतता है उसका चिंतन नहीं करो, फुल स्टॉप। और तीन बिंदी को याद करो, ये विधि है सर्व खजानों को जमा करने की। और बिंदी समाप्ति, और डॉट के लिए क्या कहा है? फुल स्टॉप। बाबा ने ये लगाने को बोला है, क्या नहीं लगाने को बोला? क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य का मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब नहीं लगाना है। क्या लगाना है? बिंदी, फुल स्टॉप। बीता बीती सो बीती, जो हुआ वो फॉल स्टॉप, फुल स्टॉप। और पॉइंट, पॉइंट के लिए क्या क्या कहा है बाबा ने? ड्रामा के पॉइंट्स को बुद्धि में रखो, पॉइंट को याद करो, पॉइंट्स को बुद्धि में रखो, पॉइंट्स को धारण करो। क्या क्या? हाँ, ये एक दूसरी पॉइंट है। क्या कहा? एक लकीर तो उसको एक जीरो लगाओ तो 10, तो संख्या बढ़ती जाएगी, 50, एक है पांच, पांच को एक जीरो लगाओ तो पचास और दूसरा लगाओ तो व्यर्थ। अभी थोड़ा बदल गया है, थोड़े अपवाद है इसमें नियम में, अब बाबा को बताने पड़ेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं जितने जीरो लगाओगे ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ये अविनाशी खजाने हैं तुम्हारे। तो ये जो था, ये था एक चिंतन। कोई भी वस्तु हम देखे उसको ज्ञान के साथ जोड़े, जैसे ये ले लो,
ये क्या है, फ्लावर पॉट,
इसके विषय में क्या कहेंगे, हमें जीवन में क्या बनना है, ऐसा फूल के विषय में क्या क्या कहेंगे, फूल समान बनना है, खुशबूदार बनना है, क्या गुलदस्ता बनना है, जीवन ही गुलदस्ता बन जाए, और क्या क्या, फूल की तरह खिले रहे, उदास नहीं होना चाहिए। आज की मुरली में भी है, मुरझाए हुए हो जाते हैं कोई कोई, मुरझाना नहीं है, बिलो द विथ, वो टच में नॉट ना हो, छुई मुई नहीं बनना है, सुगंध बिखेरना है। तो कहने का भाव ये है, कैसे हमने अभी ये चिंतन किया, चिंतन करने की विधि है कुछ प्रश्न अपने आप से पूछना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां। कोई भी एक महावाक्य पढ़ते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में आ जाए कि बाबा ने ये क्यों कहा, ये कब कहा, कैसे कहा, किस संदर्भ में कहा। चार शब्द है, एक होता है भावार्थ, एक होता है भावार्थ, इसका भाव क्या है जो बाबा ने कहा, दूसरा होता है शब्दार्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है। कभी कभी मुरलियों में कुछ विरोधाभासी बातें आती है जो हमको लगता है कि, परंतु वहां देखना होता है संदर्भ क्या है। कभी कभी बाबा कहते तुम्हें ये गीत संगीत बिल्कुल पसंद नहीं आने चाहिए, बाप को भी गीत संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तो आवाज से परे जाना है। कभी मुरलियों में आता है बच्चे जब उदास हो जाओ तो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए, तुम्हारे पास रिकॉर्ड होने चाहिए। एक अव्यक्त बाबा जब ओम शांति भवन में आए थे विदेशियों से मुलाकात, बाबा ने कहा है विदेशियों को, यदि उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाके डांस करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, छोटा सा वीडियो भी है उसका 3 मिनट का, जिसमें बाबा ने कहा है उदास हो जाओ तो क्या करो, बाथरूम में जाके, आप नहीं करना। परंतु बाबा ने कहा है ये बात। कभी बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, वो शिव बाबा भी जिनका जिसका कनेक्शन इससे नहीं उसका उससे भी कनेक्शन नहीं, साकार से नहीं तो निराकार से भी नहीं, ये बाबा ने बहुत बार कहा है। परंतु फिर कभी कभी मुरली में आता है यदि इस ब्रह्मा को याद किया तो नर्क में जाओगे, एक मुरली में यहां तक भी था, यदि ब्रह्मा में बुद्धि अटकाई तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो भी मनुष्य है, वो साधारण पतित मनुष्य है, लॉन्ग बूट है, उसमें नहीं फंसना है तुमको। दोनों तरह की बात है। तो मुरली में जो बातें चलती है, वाक्य आता है, संदर्भ क्या है, देश काल परिस्थिति अनुसार महावाक्य चले है, कुछ मुरली में कुछ आता है, कुछ मुरली में कुछ आता है, संदर्भ क्या है। एक है वाक्यार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, और चौथा है गुणार्थ। गुड़ अर्थ क्या है उसका, साधारण से शब्द है परंतु उसमें बहुत गोपनीय रहस्य छिपा हुआ है, शायद हमारी बुद्धि उसे देख नहीं पा रही है। तो ये चिंतन के विषय में चार बातें थी। इस क्लास को हम यहां पूरा करते हैं, क्योंकि हमने लेट चालू किया, थोड़ा देर और बैठेंगे, सभी बैठ सकते हैं ना, तो अभी एक 2 मिनट का गैप लेते हैं, नीचे जो बैठे हैं थोड़ा उठ सकते हैं, और 2-3 मिनट के बाद फिर से यहीं आ जाना है सबने। ओम शांति।